हरे कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा के द्वारा बांध दिए गए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इस लीला पर सिद्धांत व्यक्त कर रहे हैं कि एवं संदर्शिता यंग हरिण भृत्य वश्यता स्वशे नापि कृष्ण न जस्येदम शिश्वरम वशे। जिन श्री कृष्ण के वश में यह सारा विश्व है, समस्त देवता मुनि जिनके वश में है, उन भगवान को माँ यशोदा ने बांध दिया। तो भगवान इस लीला द्वारा यह दिखा रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के वश में हूँ। इस सारे जगत के जो स्वामी हैं, वो किसी भी व्यक्ति के वश में हो सकते हैं यदि वह कृष्ण से प्रेम करे। गीता में भगवान कहते हैं कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। मुझको जो जिस भाव से भजता है, मैं उसी भाव से उसको भजता। यदि कोई श्री कृष्ण को पुत्र मानता है तो श्री कृष्ण पुत्र बनने के लिए तैयार है। भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है, हम लोगों की तरफ से कमी है कि हम यशोदा जैसा भाव बनाते नहीं। पता नहीं कैसे कैसे बच्चों को अपना बच्चा मान लेते है ना। कोई संबंध नहीं है पहले का, काल क्रम से कोई हमारा पुत्र हो गया तो हम मानते हैं हमारा पुत्र है, लेकिन वह पुत्र फिर छीन लिया जाएगा। कृष्ण ऐसे पुत्र हैं कि वे कभी नष्ट नहीं होंगे, कभी अंत नहीं होगा। भगवान चाहते हैं कि कोई हमें पुत्र भाव से प्रेम करे, प्रियतम भाव से प्रेम करे, हमारा आदर करे, लेकिन हम लोग कृष्ण को मानते ही नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है। तो भगवान इस जगत में आया करके अपने को दिखाते कि देखो मैं कैसा। जब बहुत काल तक भगवान इस संसार में नहीं आते हैं तो लोगों में कंफ्यूजन छाता है कि भगवान है या नहीं है, है तो कैसा है ना। ऐसे कंफ्यूजन छा जाता है। कुछ लोग तो अपना मत प्रकाशित कर देते हैं, कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, और लोग पुस्तकें लिखते हैं, कहते हैं भगवान नहीं है इस जगत में। गीता में भगवान ने ऐसा कहा है, जगत आहुर अनिश्वरम। खुद ईश्वर बोल रहा है गीता में, कहता है कि असुर लोग कहते हैं कि इस जगत का कोई ईश्वर नहीं। ईश्वर अगर होगा तो बूढ़ा हो गया होगा। एक बार रसिया में मीटिंग किए थे कुछ लोग, कल्याण पत्रिका में निकला था, लोग मीटिंग किए थे कुछ वैज्ञानिक कि भगवान को गद्दी से उतार दिया जाए। बहुत काल तक अपने मन का किया अब दूसरे को बनाया जाए भगवान। लेकिन प्रस्ताव में ये पेश किया गया कि वो कहाँ है जिससे हम लोग हटाएंगे, तो किसी को पता नहीं। ये सही बात है, सत्य बात है। प्रपोजल रखा गया कि भगवान को गद्दी से उतारा जाए, हटाया जाए, पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। उनको कोई नहीं हटाया जा सकता, उनको कोई नहीं हटा सकता। लोग जन्म लेते हैं, कीड़े की तरह मरते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं या कुछ भी बनते हैं, फिर जमीन में समा जाते। कितने आएंगे वैज्ञानिक, कितने बड़े बड़े लोग, लेकिन भगवान का सिंहासन ज्यों का त्यों। तो भगवान जब नहीं आते हैं इस जगत में, तो भगवान के विषय में अनेक बातें लोग करते हैं। अधिकांश लोग तो ये मान लेते हैं कि उनका कोई रूप नहीं है, वो निराकार है, क्योंकि आ ही नहीं रहे। कुछ लोग तो कहते हैं भगवान अब नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, बहुत बातें बोलते हैं। इसीलिए भगवान आते हैं और दिखाते हैं कि देखो मैं कैसा, मैं अपने भक्तों के बस में हूँ, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, सबसे अधिक अनंत धन वाला हूँ, अनंत सुंदर हूँ। भगवान आते हैं यहाँ, और जब अपने विग्रह को प्रकट करते हैं उस समय भी कुछ खल ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं ये तो वसुदेव जी का पुत्र है, ये भगवान नहीं, हम नहीं मानते। तो भगवान जब नहीं आते हैं तो उनको निराकार कहते हैं, और जब भगवान आते हैं तो कहते हैं ये आदमी है। ये भगवान के सामने भी बड़ा फेर है कि वो क्या करे, कैसे प्रचार करे। प्रभुपाद जी कभी कभी कहा करते थे कि कोई चोर चोरी करने जाता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान हमको सफलता दो चोरी में, और उस घर का मालिक भगवान से विनय करके सोता है कि हे भगवान हमारे धन को बचाए रखना। तो हम भगवान बड़े फेर में पड़ जाते हैं, हम क्या करें। चोर को सफलता दें कि धनी के धन की रक्षा करे। तो भगवान के सामने एक समस्या है जगत रच करके, वास्तव में यद्यपि उनके लिए समस्या नहीं है लेकिन लोगों में समस्या है कि वे कैसे कृष्ण को जानेंगे। तो भगवान बारंबार अवतार लेते हैं, अवतार लेकर के अपना स्वभाव प्रकट करते हैं, देखो मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं भक्त वत्सल हूं, मैं भक्त के वश में हूं, तुम मुझसे प्रेम करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, योगक क्षेमम वहाम्य, मैं तुम्हारा योग क्षेम वहन करूंगा। योगक का अर्थ होता है जुटाना, जो तुम्हारे पास नहीं है वो जुटाऊंगा, लाऊंगा और जो है उसकी रक्षा करूंगा, जिसको क्षेम कहते, मैं योग क्षेम वहन करूंगा। और आकर के लीला करके दिखाते हैं, जैसे अर्जुन की रक्षा करके दिखाए, रथ हांक करके दिखाए, माँ जसोदा के हाथों में बंध करके उन्होंने दिखाया, देखो मेरा ये स्वभाव है। तो भगवान अपना स्वभाव दिखाते हैं, अपना सौंदर्य दिखाते हैं, अपना बल दिखाते हैं, धन दिखाते हैं, यहाँ वो बहुत बहुत एग्जीबिट करते दिखाते हैं। वो इन सबके पीछे भगवान का एक ही उद्देश्य है कि जीव मेरे पास आवे, वो मुझे पहचाने, मेरी शरण ले। बुलाते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माँ में कम शरणम व्रज, बार बार बुलाते हैं, आओ मेरी शरण में, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ये उद्देश्य। और विशेष करके माँ जसोदा को जो सुख मिला, यह सुख है किसी को नहीं मिला। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नेमम बिरिंचो न भव न श्रीरप्यंग संश्रिता संश्रया प्रसादम ले भिरे गोपी जतत प्राप्त विमुक्तिदात। जो प्रसाद, जो सुख पाया जसोदा ने, वह सुख न तो ब्रह्मा को मिला, न शिव को मिला, न श्री को मिला। ब्रह्मा जी भगवान के अपने पुत्र हैं, खास बेटा है, खास बेटा को भी ये सुख नहीं मिला कि भगवान को गोद में लेकर खिलावे और अपराध करने पर तमाचा मारे कृष्ण को। ब्रह्मा जी कृष्ण के पुत्र हैं, नाभि से भगवान ने उनको उत्पन्न किया, लेकिन ब्रह्मा जी की भक्ति क्या है, भगवान के प्रति की आदर भाव से है, वो प्रणाम करते हैं, कभी सोचे भी नहीं कि भगवान मेरे गोद में आएंगे। और इसी तरह भगवान शिव, वो तो कृष्ण के स्वरूप माने जाते हैं, लेकिन उनको भी ये सुख नहीं मिला, कृष्ण को स्तन पिलावे, गोद में रखें, झूला झूलावे, ये सुख नहीं मिला। और न श्री, भगवान की पत्नी भारजा लक्ष्मी जी को भी ये सुख नहीं मिला, जो सुख जसोदा को मिला। नायम सुखाप भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानीनाम चात्म भूतानाम जथा भक्ति मतामिह। और फिर सिद्धांत दे रहे हैं कि भगवान भक्तों के लिए जितना सुख से प्राप्त होते हैं आसानी से, ज्ञानियों को नहीं मिलते, तपस्वियों को नहीं मिलते, फिर साधारण देहधारियों को कहां से मिलेंगे। सुखाप, आप माने प्राप्त, सुख माने सुख से, आसानी से कृष्ण सुख पूर्वक मिल जाते हैं भक्तों को, भक्ति से प्राप्त होते हैं, भक्त्या माम अभिजानत। तो माँ जसोदा ने भक्ति किया, नंद महाराज ने भक्ति किया, तो उनके गोद में भगवान पुत्र बनकर आए। यदि हम हमारे भीतर भी ये इच्छा होगी कि भगवान हमारा पुत्र बने और उसके लिए हम प्रयास करेंगे तो भगवान हमारा पुत्र बन जाएंगे, और दूसरा कोई व्यक्ति पुत्र नहीं बन सकता है हमारा। आप किसी से प्रार्थना कीजिए, किसी आप मनुष्य से कहिए कि मैं चाहता हूं कि आप मेरा बेटा बनिए दूसरे जन्म में, क्या वो बन सकेगा? उसका जन्म कहाँ होगा पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है। भगवान से प्रार्थना किया गया कि आप मेरा पुत्र बन जाइए, वसुदेव जी ने कहा, देवकी ने कहा, तो भगवान पुत्र बन गए। लेकिन यहाँ किसी से भी, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से अगर कहिए कि आप, मेरी इच्छा है कि आप मेरा बेटा बनिए, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में, वो क्या करेगा, मर जाएगा, बेटा बन नहीं सकता है, क्योंकि जन्म लेना अपने हाथ में है नहीं। नहीं, भगवान तो जिसका पुत्र बनना चाहे बन सकता है, लेकिन बनते हैं पुत्र भक्तों का, भक्तिमान और ज्ञानियों का नहीं, यहां तक कि जो आत्मभूत हो गए हैं उनको, उनका भी नहीं, उनको उनको भी कृष्ण नहीं मिलते हैं। दो तरह के जीव यहां पर हैं, एक को आत्मभूत कहते हैं और दूसरे को जीव भूत कहते हैं, आत्मभूत अथवा ब्रह्मभूत। जब हम अपने स्वरूप को जान जाते हैं कि हम देह नहीं है, देह से अतीत हैं और अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं ब्रह्म भूत। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। लेकिन दूसरे जीव जो है वो देह भूत या जीव भूत है। ममैवांसो जीव लोक के जीव भूत सनातन। तो जब तक हम देह के प्लेटफार्म पर हैं, तब तक हम लोगों को देही कहा जाता है। और जब देह से मुक्त हो जाते हैं, आत्मा को समझ लेते हैं कि अचिन्मय है, तो उसको आत्मभूत कहते हैं या ब्रह्मभूत कहते हैं। हम लोग देह नहीं हैं, हम लोग स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिट हैं। जब उसको समझ जाते हैं तो इसको ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। और जब व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था पर हो जाता है तो न सोचती न कांक्षती। संसार में कुछ भी नुकसान हो जाए उसे शोक नहीं होता है, और कुछ भी वस्तु हो या न हो उसके लिए इच्छा नहीं होती। न सोचती न कांक्षती, न कांक्षती न सोचती, कोई इच्छा नहीं होती है संसारिक वस्तुओं की, और न शोक होता है। लेकिन जो देह भूत होता है, देह को मैं मानता हूं, उसे बहुत बहुत कामना होती है। तो भगवान भक्तों को मिलते हैं। तो इस प्रकार माँ यशोदा के हाथों से उखल में बंध कर भगवान जिस जगत को ये संदेश दे रहे हैं, देखो मैं अपने भक्त के वश में हूं, तुम भी चाहो तो मुझे बांध सकते हो। कैसे हूं छोड़े ना ही छुड़ाए, रस्सिया बंधो प्रेम की डोर। भगवान कहते हैं प्रेम का धागा जीना जीना है, थोड़ा है लेकिन इसमें इतनी शक्ति है कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता। तोड़ा नहीं जा सकता। माँ यशोदा ने बांध दिया तो फिर भगवान की हिम्मत नहीं थी कि वे अपने से खोल ले। तुलसीदास जी ने अपने विनय पत्रिका में लिखा है कि जिन बांधो सुर असुर नाग मुनि, प्रबल कर्म की डोरी, तेजस मति हाथी बांधो सकत न छोरी, ऐसे कुछ पद है उनका। कि जिन्होंने कर्म की रस्सी से ऋषि मुनि देवता पितर सबको बांध कर रखा है, उन भगवान को यशोदा ने ऐसा बंधन में बांधा कि सकत न छोरी, वो अपने से नहीं खोल सके। माँ घर का काम कर रही थी और वे उखल में बंधे बंधे चुपचाप पड़े थे, खोल नहीं सके। नंद बाबा खोले, नंद बाबा खोल सकते थे क्योंकि उनकी पत्नी बांधी थी और कोई नहीं खोल रहा था, किसी को साहस नहीं हुआ कि वो कृष्ण को खोल दे। नंद बाबा आए, पूछे कौन बांधा है, तो पता लगा कि उनकी भारजा यशोदा खोली है, तो वो जाकर खोल दिए। पिताजी खोल दिए, माँ बांधी थी, भगवान स्वयं नहीं खोल सके। तो एवं समदर्शिता यंग हरिणा भृत्य वश्यता, इस प्रकार भगवान दिखाते हैं अपना स्वभाव, अपनी लीला करके कि मैं भक्तों के वश में। इस तरह भगवान से प्रेम करना चाहिए जैसे यशोदा ने किया। तो जब माँ घर के कामों में व्यग्र हो गई, कृष्ण के सेवा के लिए दूसरे कामों में, तो श्री कृष्ण की दृष्टि दो वृक्षों पर पड़ी। यशोदा के आंगन में दो यमलाज अर्जुन के वृक्ष थे, यमल जोड़ा। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि इन दोनों का उद्धार करना चाहिए। हरिश्वरि जी ने लिखा है कि भगवान बंधे हैं लेकिन दूसरे को मुक्त करना चाहते हैं। ये उदार व्यक्ति का स्वभाव होता है, स्वयं दुख में रहता है फिर भी दूसरे का हित करता है। भगवान विपत्ति में है, बंधन में है, लेकिन दूसरे जीवों को मुक्त करने का सोचने लगे। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत धन होगा तब हम धर्म करेंगे। धर्म एक विचार है, वास्तव में कम धन से भी धर्म किया जा सकता है। भगवान स्वयं बंधन में है लेकिन उन्होंने सोचा कि इन वृक्षों का उद्धार करना चाहिए, और वे बकैया चलते हुए घसीटते हुए उखल को गए, दोनों वृक्षों के बीच से गुजरे। कृष्ण तो पार गए कर गए, लेकिन तिर्यक होकर, तिरछा होकर उखल अटक गया। और कृष्ण थोड़ा सा जोर लगाए तब तक चढ़ 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 करके दोनों वृक्ष धराशायी गिर गए। अब सब लोग दौड़े अपना अपना काम धंधा छोड़कर, ये क्या हुआ, आए बाप, ये बिना आंधी के तूफान के दोनों वृक्ष कैसे गिर गए। कुछ बच्चों ने देखा था कि कृष्ण खींचा इसी से गिरा, तो बच्चे कह रहे थे कि कृष्ण के खींचने से गिरा है। तो दूसरे लोग डांट डपट दिए, चुप रहो, इसके खींचने से कैसे गिरेगा। तो वृक्षों के गिरने पर बड़ा अपशकुन जैसा हुआ वहां उन लोगों की दृष्टि में। उसी दिन वो लोग एक मीटिंग किए, कि अब इस स्थान को छोड़ देना चाहिए, यहाँ बहुत विपत्ति आ रही है। उस दिन एक पूतना आई थी, तृणावर्त आया था, उस दिन ट्रक उलट गया, वो गाड़ी उलट गई, सकट उलट गया, आज वृक्ष गिर गए, किसी दिन घर ही गिर पड़ेगा। किसी तरह नारायण की कृपा से बच्चा बच रहा है, अब हम लोगों को इसको लेकर कहीं भाग जाना चाहिए, तब ये लोग गोकुल छोड़कर वृंदावन जाएंगे। उपनंद महाराज जो नंद जी के भाई थे, उन्होंने बताया कि ये स्थान छोड़ देना चाहिए। आज भी हम लोग देखे हैं जो लोग गौएं चराते हैं वन में, तो दो चार साल के बाद वो अपना स्थान छोड़ देते हैं, कहीं बछड़े मरने लगते हैं, कहीं कुछ होता है तो बदलते रहते हैं, या गौएं घासों को चर जाती हैं तो फिर दूसरे स्थान पर जाते हैं। हम लोग देखे हैं पहाड़ों में घूम घूम कर प्रचार किए हैं। तो नंद बाबा समस्त गोपों के साथ वृंदावन चले गए। उसके बाद तो हम कल ये कथा सुनाएंगे कि ये दोनों वृक्ष कौन थे और क्यों वृक्ष बने थे। ये कुबेर के पुत्र थे, देव जो कोषाध्यक्ष हैं देवताओं के, उनके पुत्र थे, बहुत धनी के पुत्र थे। साधारण धनी का लड़का तो इतना उदंड हो जाता है, वो लोग तो धनराज के पुत्र थे, धनद के पुत्र थे। देवताओं को जितने धन की जरूरत होती है सब कुबेर जी देते हैं, वो खजांची हैं। और इस पृथ्वी से करोड़ों गुना ज्यादा धन वहां है। तो उनके दो लड़के इतने बदमाश हो गए, इतने बदमाश हो गए कि वे नग्न स्नान करते थे गंगा जी में और स्त्रियों के साथ विहार करते थे। जब आदमी धन के नशा में हो जाता है तो समाज को केयर नहीं करता है कि क्या कोई कहता होगा। नंग धड़ंग घूमते थे और शिव जी के धाम में, ये धन का इतना बड़ा अंधा प्रभाव होता है, देवता होकर के भी नग्न थे। और नारद जी ने उनको दंड दिया, वृक्ष बनाया कृपा करके। पहले से ये परंपरा है, नग्न व्यक्ति को देख करके डांटा जाता था, दंड दिया जाता था। आजकल तो किसी को कोई दंड नहीं दिया जा रहा है। हम देखते हैं अमेरिका में स्त्रियां कॉपिंग पहन कर रहती, लंगोटा पहन कर रहती, ये उल्टा हो गया है। पुरुष पैंट पहनते हैं और वो लोग लंगोटा काटती पहनती, ठीक उल्टा। नारद जी नलकुवर और मणिग्रीव को दंड दिए, कृपा किए, ब्रज में जन्म दिए वृक्ष के रूप में। केवल नग्न स्नान करने के कारण दंड दिया गया। बहुत सावधान रहना चाहिए, नग्न रहना एक सामाजिक अपराध है रियली, क्योंकि मनुष्यों का मन भगवान में लग नहीं रहा है, संसार में लगा हुआ है, विषय भोग में लगा हुआ है। तो यदि कोई नग्न होता है, शरीर को दिखाता है, तो मनुष्यों का चित्त भगवान में न लगकर विषय भोग में और लग जाता है, तो चेतना दूषित होती है। और चेतना दूषित करने से बढ़कर के और कोई अपराध नहीं है इस संसार में। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस न रह करके माया कॉन्शियसनेस हो जाता है। इसलिए अपने को ऐसा ढक करके रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि हमारे चलते किसी के मन में कोई दुर्वासना न उत्पन्न होने पावे। ये भगवान ने नियम बनाया है। यदि कोई कहे कि हम नग्न रहेंगे इसमें दूसरे का क्या बिगड़ता है, तो तुम्हारे चलते दूसरे की चेतना दूषित होती है, और जब दूषित चेतना होगी तो कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। कृष्ण का स्मरण नहीं होगा तो ये सबसे बड़ी हानि है। इसके पीछे यह साइंस है। इसलिए शरीर को ढक कर रखना चाहिए। तो कल आप सुनेंगे किस तरह नलकुबर और मणिग्रीव अप्सराओं के साथ नग्न स्नान कर रहे थे और नारद जी उन्हें दंडित किए, उनका उद्धार किए। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।
The Supreme Personality of Godhead, He compiled the Bhagavatam for the benefit of all mankind throughout all of the universes. There's so many universes, we all know that Lord Mahavishnu, he's lying down in yoga nidra, mystic slumber, and out of the pores of his skin and out of his breathing, so many universes are emanating. Unlimited universes are emanating from the body of Mahavishnu. And then inside each universe, a whole fantastic show takes place. Called the Mahatattva. So many planets at night when we go out and look into the sky, see thousands and thousands of planets, hundreds of thousands. We cannot even count them. And on each planet, from the topmost Brahma Lok down to Patala Lok, there are living entities expanded everywhere. But unfortunately, everyone is caught in this web of illusion known as Maya. Everyone is caught in the cycle of samsara, repeated birth, old age, disease, and death. On the way over here this evening, Nardarishi Prabhu was telling me a story about one devotee he knows. He's become successful, he's made a lot of money. Problem for him, he's in his late 60s. All his life he worked hard, he made some good money, and now he's almost ready to die. And now he's thinking he's going to move to some other location in America, start up another business, live out the end of my life. When actually, he should be constantly hearing and chanting the holy name of Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. He should go to the holy Dham, study the Srimad Bhagavatam, just like Raghunath Das Goswami, great pure devotee of Sri Chaitanya Mahaprabhu. He didn't worry about pounds, shillings and pence, making a lot of money, becoming famous, getting a lot of followers, having a lot of beautiful women, the so-called enjoyable life. He simply chanted Hare Krishna, studied the Srimad Bhagavatam, offered dandavats to the Vaishnavas. Very simple and sublime life. So throughout our life we may have so many obligations, but we have to have a plan to wind up the drama. Everyone is living in a drama. We're all playing some kind of role. We're all an actor on the stage. And we have to make our plan when we're going to do our last curtain call. When we're going to make that move where we're going to dedicate everything to Krishna, the speaker of the Bhagavatam, the compiler of the Bhagavatam. By all the Vedas I am to be known, Krishna says. Indeed, I am the compiler of the Vedas, the knower of the Vedas. So the Srimad Bhagavatam, being the mature fruit of the tree of Vedic wisdom, is the most essential book for the Vaishnavas to study scrutinizingly and to follow the instructions of. Srimad Bhagavatam is giving the living entities instructions on the course of Dharma, of Varnashram Dharma. We all have to carry out certain Dharma, but Srimad Bhagavatam is giving the higher message. As Sri Chaitanya Mahaprabhu instructed his very intimate disciple, the great devotee, Ramananda Roy, that the perfection of Dharma, the perfection of Varnashram Dharma, is to hear and chant about the glorious pastimes and the holy name of the personality of Godhead, Lord Sri Krishna. And then when we hear the message of the Bhagavatam and get some understanding of how the Bhagavatam is directing us, because the proof of your hearing is that you will want to follow the wise instruction. You will want to follow that instruction that is leading us out of the darkness and into the light. This is the nature of the Srimad Bhagavatam. The nature of the Bhagavatam is that it is directing every living entity to come to this higher platform that Chaitanya Mahaprabhu was speaking about, becoming totally absorbed in hearing, chanting, and remembering the Supreme Personality of Godhead. And within the realm of hearing and chanting, also, we have to include what we understand to be true preaching. Preaching the merciful message of Godhead to the unfortunate living entities. This is the message of Bhagavatam, to bring us to that platform of consciousness whereby we can see Krishna face to face in this very lifetime. So anyone who doesn't have this Srimad Bhagavatam at home, I implore you to please somehow or other save up your pennies, nickels, dimes, dollars. Shiva Radya Prabhu just bought the Srimad Bhagavatam, right? Was it today? Or yesterday? He sent his son to the temple and we gave him the lowest discount price. And he got Srila Prabhupada's Srimad Bhagavatam. Of course, we understand it's also Veda Vyas. Srila Veda Vyas, it's his Srimad Bhagavatam. Srila Shukadeva Goswami, it's his Srimad Bhagavatam. All the great Vaishnavacharyas have been represented perfectly by His Divine Grace Srila Prabhupada in this commentary on the Srimad Bhagavatam. So I'd like to thank very much His Holiness Radha Govinda Maharaj for coming to America, especially stopping by New York, where we need help. New York is a very, very big city. We were just riding, Narada Rishi Prabhu and Ramananda Prabhu and myself. We went a few blocks past the school here, and we were riding, and we see New York. It's such a big city, famous city, dynamic city. But it's a very dangerous place. It's not a fit place for a lady or a gentleman, actually, New York. Somehow or other, we wind up here due to karma sometimes or desire. We wind up in New York. When you know you should really be in Vrindavan, you should really be in Mayapur, Jagannathpur, in the Holy Dham, just dedicating your whole life to sadhana, puja, hearing and chanting this message. Live very simple. Everyone can live on rice, chapati, and sabji. But we have to come to the West and get a 45-inch TV. Right? We need a CD player. We need a nice car. We need a house. So many things that we think we need, but really we don't need them. Because we go to these holy places like Vrindavan, Mayapur, and we see the great souls that are residing there. They're living very simply, but every day, what are they doing? Japa. All day you see them walking around Vrindavan, Parikrama, doing japa, visiting darshan at the different mandirs, hearing and chanting. And if you have some children in the course of that, you train them to do the same thing. I remember a few years ago I was in Vrindavan, and I was having the fortune of decorating the murti on the altar of Sri Sri Radhashyama Sundar. So I used to go to Banki Bihari Mandir every night because they had beautiful mala, beautiful garlands, rose garlands, malati flower, so many beautiful flowers that I used to like to offer to the deity because they smelled very nice. And you would go there and you'd see some 8 or 10 year old boy making the garlands and selling them. So then I went with one other devotee. It was late at night and the garland wallahs were already gone. So we went to their house. And we went to their house and they had about 4 children, all very small, and they were all making garlands. And the mother and father, they made garlands when they were little children. And their mother and father made garlands for Krishna. So sometimes we think we have to do this, we have to do that. I need this, I need that. And it complicates our life. The Bhagavatam is there so we can understand where we're at on the spiritual path, what mistakes we may be making, how to rectify the situation, and how to come to the highest platform as soon as possible. Because as in the case of this devotee who's worked so hard, once we hit 65, if we do reach that age, how much longer do we have after that? few years, 5 years, 10 years. Goes like that. So we have to make this plan to always hear and chant in the Association of Devotees. And then when we leave the Association of Devotees by building the faith in Krishna that comes from hearing and chanting, then we have to always chant His name at home. We have to establish the puja at our house. We should visit the mandir also. We should study every morning and every evening the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam. Otherwise, if we hear, especially when we hear from the sadhu, which is very purifying, and then we walk back to 108th Street, we don't want to act like the elephant. After taking bath, the elephant goes out onto the dirt and rolls around. You see, the elephant gets dirty again with karmic activity. So we should take the association of the sadhu and the Srimad Bhagavatam and really utilize it to make an end to our suffering, to make an end to our sojourn through this vicious cycle of repeated birth, death, old age and disease. Who can say that they feel safe about their next 747 flight? Right? What was it, 3 weeks ago? The plane blew up. If you fly tomorrow to India, are you going to think about that when you get up into the air? Are you going to get nervous? That means that you're not fixed enough in the Bhagavatam, if you do. You don't have enough faith in Krishna. So we have to dedicate our whole lives. That means at home with the family. We have to organize the whole family in such a way that the family is becoming Krishna conscious. And if we don't have a big family, then we organize our own life. It's a little easier for us then. We organize our own life to become very Krishna conscious. So again, we'd like to thank very much His Holiness Radha Govinda Maharaj. Also, I'd like to thank Bhakta Avatar Prabhu, somewhere here, who helped to organize this Bhagavad Gita. These past 7 days, it will be finishing tomorrow evening. There's a wonderful event here in New York to have the Bhagavad Gita, and especially in this circumstance, because Radha Govinda Maharaj, being a disciple of His Divine Grace, Srila Prabhupada, is representing the pure Srimad Bhagavatam. The Bhagavatam as it is. Because Srila Prabhupada was a great, great, great pure devotee of Lord Sri Krishna, Supreme Personality of Godhead. And especially this being Srila Prabhupada's centennial anniversary, His 100th birth anniversary, I'm certain he's very, very pleased that this program was organized and that the devotees who have attended this program have showed enthusiasm to hear in the assembly of Vaishnavas, to hear from the sadhu this message as presented by Veda Vyas, by Shukadeva Goswami. So I think everyone is going to get the blessings of His Divine Grace. Srila Prabhupada is going to be very magnanimous this year, just like when it's the father's birthday and the father's feeling very magnanimous, he likes to give mercy to the children. So ultimately we're all children of Srila Prabhupada. Everyone is Prabhupada's disciple. Everyone is Prabhupada's siksha disciple. He's giving us all instruction. When you get that set of Srimad Bhagavatam, or that Bhagavad Gita as it is, and you read it, Prabhupada is giving you instruction. He's trying to lead you on the path to accept a bona fide spiritual master and surrender unto him, to follow this path of Krishna consciousness as best you can for the duration of time that you have left in this temporary body. So we should take this message seriously, not nonchalantly, like it's another saptaha. This is just another ordinary session. Another holy man from India has come, so we'll go and have his darshan and hear. Take what Maharaj is saying to heart, purify your heart, study the Srimad Bhagavatam, and don't let Maya catch you unprepared to die. We have to be prepared to face the final exam, just like we're in a school right now, right? What does the school do? They educate, and then they test to see what you've learned from your lessons. And if you do very, very good, you get a nice promotion to the next grade, and ultimately you graduate and get your diploma, and you become an expert in your field. So this whole life that we have is a big education course. And death is the final exam. So be prepared. Chant the holy name of Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Not just... Start out. If you can only start with one round, that's okay. But then progress to two rounds. Three rounds. Try to chant a minimum of 16 rounds. But if you can chant 64 rounds, what is the harm? Most of you are getting a little bit older, at least materially. So please take this message to heart. And the proof of that will be that you have to dedicate your life to devotional service. It's never too late to start your devotional service, and it's never too early to begin your devotional service. Srila Prabhupada ki jai.
Thank you.
Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswatdeve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pascha Deshatarine Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvise Namaha Tapta Kanchan Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnamebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Krishnastu Griha Krittesu Vyagrayam Matari Prabhu Adrakshidarjunau purvam guhyakau dhanadat majau Puranarad shapena brikshatam prapitau madat Nalku varmani grivau iti khyatau shriyanvitau Rajavacha kathyatam bhagavaneta tayoho shapasya karanam Jattad vigarhitam karma jenava devarshestamaha श्री कृष्ण उखल में बंधे बंधे दो अर्जुन वृक्षों का उद्धार किए जब मां अपने घर के कामों में लग गई तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये दो अर्जुन के वृक्ष हैं अरे खड़े हैं तो भगवान तो जानते थे कि ये दोनों वृक्ष पूर्व जन्म में कुबेर जी के पुत्र रहे हैं कुबेर जी आठ लोकपालों में एक लोकपाल हैं इस विश्व के व्यवस्थापक और संपूर्ण धन के स्वामी हैं इनको धनद कहते हैं देवताओं को जो भी धन की जरूरत होती है तो कुबेर जी देते हैं सबको एक कोषाध्यक्ष हैं स्वर्ग लोक के इसीलिए इनको धनद कहते हैं धनपति तो इनके दो पुत्र थे, कुबेर जी एक देवता हैं और इनके दो पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव पूर्व काल में नारद जी के शाप से वृक्षताम प्राप्त हो, वृक्षत्व को प्राप्त हो गए, वृक्ष हो गए, बहुत नीचे गिरना पड़ा इन्हें। बाहरी दृष्टि से तो ये बहुत नीचे गिरे, लेकिन तत्वतः इनका बहुत बड़ा विकास हुआ, इनकी उन्नति हुई। तो पूरा नारद साप है ना, नारद जी के साप से। श्रीमद् भागवतम में अनेक स्थानों पर साप और वरदान का वर्णन है। इस जीवन में हमें महान पुरुषों का आशीर्वाद लेना चाहिए, कभी ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे किसी के मुख से हमारे लिए साप निकले। साप से बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई हैं। गजेंद्र साप से हुए थे, इंद्रदुम्न महाराज, हुहू नाम का गंधर्व ग्राह हो गया था महाराज परीक्षित, साप से सातवें दिन मरने वाले हैं। कई बातें साप से हो गया, साप से वशिष्ठ जी मर गए, साप से जनक जी मर गए, ऐसा वर्णन है कई जगहों पर। तो नारद जी ने इन्हें शाप दिया कि वृक्ष हो जाओ। क्यों शाप दिया? ये मद में थे, देवता थे और देवताओं में भी बहुत श्रेष्ठ देवता के पुत्र, बहुत ऊंची स्थिति है, मनुष्यों से करोड़ों गुना हायर पोजीशन है देवताओं का, और उसमें भी ये धनद के पुत्र थे, फिर भी ऐसा कुकर्म किए जिससे नारद जी ने इन्हें शाप दिया। तो इस पर महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं, हम लोग यहाँ से कथा प्रारंभ कर रहे हैं। राजोवाच कथ्यताम भगवन ने तयो शापस्य कारणम, कि हे भगवन, हे सर्वज्ञ सुखदेव जी, आप तयो शापस्य कारणम कथ्यताम, आप उन दोनों के नलकुबर और मणिग्रीव के शाप का कारण बताइए। जत्तत विगर्हितम कर्म, उन्होंने ऐसा कौन सा विगर्हित निंदनीय कर्म किया कि देवर्षि नारद के मन में भी तमह आ गया। तमह का अर्थ होता है क्रोध, ये तम क्रोध है, आता है तमोगुण और रजोगुण से, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव, उसमें भी क्रोध जो है वो तमोगुण प्रधान होता है। तम का अर्थ होता है अज्ञान। हम लोग जो इस संसार में क्रोध करते हैं तो कोई न कोई हमारे काम में, हमारे इंद्रिय तृप्ति में बाधा होती है, तब हमारे भीतर क्रोध का उदय होता है। लेकिन नारद जी तो ऐसे हैं नहीं, वो तो प्रकृति के तीनों गुणों से पार हैं, उनके हृदय में विशुद्ध सत्व का उद्रेक रहता है, भगवान हमेशा स्फुरित रहते हैं। जैसे टीवी के पर्दे पर, स्क्रीन पर कोई चित्र साफ आता रहता है, वैसे नारद जी के हृदय पर हमेशा भगवान उदित रहते हैं, उन्हें ध्यान करना नहीं पड़ता है, उन्हें मन में जोर लगा करके चिंतन नहीं करना पड़ता है, भगवान उनके हृदय में अपने आप स्फुरित होते रहते हैं। तो उस हृदय में क्रोध कैसे हो सकता है? इतने महान वैष्णव के हृदय में क्रोध कैसे संभव है? क्या उन्होंने गलत काम किया था? नलकुबर और मणिग्रीव ने कौन सा निंदनीय नीच कर्म किया कि देवर्षि नारद के हृदय में भी क्रोध आ गया? निश्चित है कि यह क्रोध उनके हित के लिए हुआ। जैसे माता पिता कभी क्रोध करते हैं अपने बच्चे पर, तो उनका वह क्रोध बच्चे का कभी अनिष्ट करने वाला नहीं होता है, सर्वदा हित करने के लिए ही क्रोध आएगा। तो वह क्रोध वास्तव में क्रोध नहीं होता है, वह उनका स्नेह ही क्रोध बनकर आता है। कोई पिताजी को क्रोधित देखकर कहे कि अरे ये तो बैरी हो गए, अपने पुत्र के बैरी हो गए, बैरी नहीं हो गए, कभी कभी वह स्नेह गाढ़ होकर क्रोध का रूप धारण करता है। जैसे माँ जशोदा, कल कथा बीती थी, कृष्ण को मारने के लिए छड़ी लेकर आ रही है, बांध रही है, लेकिन वह घनीभूत गाढ़ है, स्नेह ही क्रोध के रूप में आ रहा है। तो दूध पिलाने में और कृष्ण पर तमाचा लगाने में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, क्योंकि उसका धरातल एक है, प्रेम ही इस तरह से होता है। कभी प्रिया अपनी पत्नी यदि मान कर जाए, बोले नहीं, रुस जाए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह क्रोध है, अब प्रेमहीनता का सूचक, वह प्रेम ही क्रोध के रूप क्रोध का रूप धारण करता है। तो उच्च कोटि के वैष्णवों के हृदय में जो क्रोध होता है किसी के प्रति, तो उनका स्नेह ही क्रोध के रूप में परिणत होता है, वे हित करना चाहते हैं। ये सिद्धांत है, श्लोक में भी ये उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। जैसे माँ का क्रोध बच्चे के प्रति या प्रिया का क्रोध अपने पति के प्रति, उसमें प्रेम के अलावा और कोई कुछ नहीं होता। कई दिन तक कुछ तो पति और पत्नी ऐसे होते हैं बोलते नहीं है, रोज खाते हैं, एक ही संग रहते हैं लेकिन बोलते नहीं, ऐसा भी देखा गया। तो इस तरह से नारद जी के हृदय में जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है वो भक्ति है, वह दिव्य है, ट्रांसडेंटल मैनिफेस्टेशन है उनके मन का दिव्य। फिर प्रश्न है कि किस तरह से उन्हें क्रोध हो गया, ऐसा मतलब उनका स्नेह जो था क्रोध के रूप में कैसे व्यक्त हुआ, ये प्रश्न का बीज है। तो सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर देते हैं रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ। नलकूबर और मणिग्रीव एक तो धनदात्मजौ, एक तो धनद के आत्मज थे, बहुत धनी व्यक्ति के पुत्र थे, और धनी में भी किसी मनुष्य के पुत्र नहीं, देवता के पुत्र थे, और उसमें भी धनद के पुत्र थे। तो अब कहना ही नहीं कि इनके पास कितना पैसा होगा और दुनिया का भोग भोगने की इनको कितनी शक्ति होगी। और जन्म हुआ ऊंचे कुल में, देवता में, पेरेंट मिले बहुत हाई धनी, और उस पर भी इनका पोजीशन बहुत बड़ा हो गया इस जगत में। ये रुद्र अनुचर, भगवान रुद्र के अनुचर हो गए, अब तो कहना ही नहीं कि कितना इनका मद बढ़ेगा। अब भगवान शिव का पर्सनल अपना आदमी कोई हो जाए तो उसके सामने बोलने वाला दुनिया में कौन रहेगा। तो रुद्रस्य अनुचरौ भूत्वा, रुद्र के अनुचर हो गए, रुद्र इस जगत में सबसे बड़े हैं, भगवान विष्णु के बाद शिव जी हैं। यद्यपि ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं लेकिन क्वालिफिकेशन में ब्रह्मा जी से बड़े हैं भगवान शिव, इनकी सर्वत्र पूजा होती है। तो आप विचार कीजिए, जन्म बहुत बड़े व्यक्ति से और बहुत बड़ा धनी व्यक्ति, और उस पर भी पोजीशन इतना बड़ा हो गया कि आजकल के राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर उनके आगे करोड़वे अंश के बराबर भी नहीं। शिव जी का पर्सनल अनुचर बन जाना ये बहुत बड़ी बात है। ये हो गया इसलिए सुदृप्त दृप्त हो गए, दृप्त का अर्थ होता है निरंकुश, अब कोई कंट्रोल इनके ऊपर रहा नहीं, कोई बोल नहीं सकता था, कह नहीं सकता था कि तुम ये अनुचित काम कर रहे हो। जो बहुत बड़े व्यक्ति का बरद हस्त आ गया इनके सिर पर, शिव जी का। तो ये प्रायः कैलाश में रहते थे, और यह भी बात प्रसिद्ध है कि कुबेर जी में और भगवान शिव में बहुत मित्रता है, बहुत गाढ़े मित्र हैं कुबेर जी। यद्यपि भगवान शिव अपने घर में कुछ नहीं रखते हैं, वे निर्धनता का जीवन व्यतीत करते हैं, एक उनका घर भी नहीं है, वो वट वृक्ष के नीचे रहते हैं, गृहस्थ लेकिन घर नहीं बनाए हैं अपने लिए, कोई अपार्टमेंट, कोई फ्लैट, कुछ भी नहीं है इनका। और काम क्या करते हैं, रात दिन राम राम रटते रहते हैं, तुम अपनी राम राम दिन रात सादर जप हुआ न गया रात, रात दिन राम राम जपते रहते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देवता दानव सभी इनको मानते हैं, इनकी शरण में आते हैं। तो ऐसे महान शिव जी के पास से लोग रहते थे कैलाश में, कैलाश शोक बने रम्य मंदा किन्य मदोत कटो, ये सर्वदा मदिरा पीते थे। ध्यान रखना चाहिए कि स्वर्गीय मदिरा इस धरती की मदिरा से दूसरी वस्तु है, ये थर्ड क्लास की मदिरा इधर जो लोग पीते हैं वो वहां नहीं है।
स्वर्ग में यहाँ की चीजें कुछ भी नहीं बिकती हैं, कुछ भी नहीं जाता है, तो देख ही रहे हैं यहाँ से कुछ भी ऊपर नहीं जाता है, है कि नहीं? कुछ भी नहीं यहाँ से जाता है। इस पृथ्वी पर भले एक देश से दूसरे देश में कुछ ट्रांसपोर्ट हो या इम्पोर्ट हो, लेकिन स्वर्ग से कुछ भी नहीं आना जाना होता। और ऊपर से स्वर्ग, जब स्वर्ग से देवता लोग मनुष्यों को देखते हैं तो उन्हें थू थू आती है कि ये कितना कुरूप है, ये पिशाच जैसे दिखते हैं स्वर्ग से, इतना अधिक सुंदर है देवता लोग। ये पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी पर पैर नहीं रखते हैं, इस पृथ्वी पर लोग पैर नहीं रखते, ऊपर ही चलते हैं, उनकी पलकें नहीं गिरती है। अब तो आना जाना भी बंद कर दिए, महाराज परीक्षित तक को लोग आए, अब आने लायक रहा नहीं। हम लोग भागवत में पढ़ते हैं एक बार उर्वशी आई इस पृथ्वी पर, तो उर्वशी स्वर्ग की सबसे सुंदरी देवी है, भगवान नर नारायण के आंखों से प्रकट हुई। मित्रा और वरुण दो ऋषि उसके साथ संग करना चाहते थे स्वर्ग में, तो उन लोगों ने प्रस्ताव डाला उससे, तो वो रिफ्यूज कर दी। तो इस पर ऋषियों ने साफ दिया कि तुमको मनुष्य भोगेगा, एक प्रकार से दंड दिया ऋषियों ने कि तुम, हम ऋषियों का, देवताओं का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर रही हो तो जाओ, तुमको मनुष्य भोगेंगे। ये दंड था। इसका मतलब जैसे मनुष्य में किसी को दंड दिया जाए, तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो जाओ तुमको सुअर भोगेंगे, ऐसे मान लीजिए कह दिया जाए। तो यह एक बहुत भारी दंड हुआ। तो स्वर्ग में किसी को गिराया जाता है तो कहा जाता है जाओ मनुष्य लोक में जाओ, नरक में जाओ, इस देवताओं के समाज से हटो। तो उर्वशी को साफ हो गया, साफ हो गया, तो बेचारी अब सोचने लगी कि कहाँ जाऊं, जब जाना ही है पृथ्वी पर मनुष्य भाव में आ जाना है तो सबसे बेस्ट मनुष्य को चुनना चाहिए, उसने ये सोचा। तो महाराज पुरुर्वा के पास आई, ये भागवत में कथा है। महाराज पुरुर्वा के पास आई तो उसने शर्त किया महाराज से, तीन शर्त किया, जिसमें दो शर्त बड़ा महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि महाराज मैं आपके पास रहूंगी, लेकिन मैं कभी भी आपको नग्न नहीं देखना चाहती। इस पृथ्वी पर लोग नग्न घुमा करते हैं कभी कभी, देवता लोग कभी नग्न नहीं रहते। देवता का मतलब है शरीर ढक करके रहना, ढक कर रहना अच्छा से। तो उसने कहा कि केवल प्राइवेट संघ के अतिरिक्त मैं आपको कभी भी नग्न नहीं देखना चाहूंगी। पहली शर्त था, जिस दिन नग्न देख लूंगी उसी दिन मैं चली जाऊंगी। उसने कहा नहीं, वो तो ठग ठग छल करने आई थी, उसको साल भर एनी हाउ रहना था, लेकिन वो ऐसा प्रस्ताव रखी जैसे महाराज को भ्रम हो गया कि ये तो जीवन भर मेरे साथ रहेगी, स्त्रियां ऐसा कपट करती, ये उर्वशी स्त्री जाति की है। तो कहती है कि हमारी और आपकी प्रीति शाश्वत रहेगी, तो आप हमारे सामने नग्न मत होइएगा, और दूसरी बात है कि महाराज मैं घी के अलावा और कुछ नहीं खाऊंगी, पृथ्वी का कोई भी पदार्थ मैं खाऊंगी नहीं। देव लोक में खा करके आई थी तो यहाँ का भोजन वो कैसे खाती, मनुष्य लोक में रहना हुआ, लेकिन उसने कहा कि साफ कहा कि मेरा आहार घी होगा, ऐसा नहीं कोई तेल डालडा ये सब मैं नहीं खाऊंगी। स्वर्ग लोक में बहुत शुद्ध आहार है, अमृत है, कल्प वृक्ष के फल हैं, जिनमें छिलका और गुठली का नामो निशान नहीं है, वो रस हो जाते हैं पूरा, देवता लोग ऐसा खाते। तो ये शर्त उसने रखा, तो इसके द्वारा ये सिद्ध होता है कि देवताओं का स्टैंडर्ड बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। और कभी कभी भागवत में उसे दिखाया गया है। तो ये रुद्र के अनुचर हो गए, देवता थे, कैलाश के उपवन में प्रायः विहार करते थे, धाम में भगवान शिव के धाम में थे, लेकिन धाम में रहकर भी इनका आचरण बड़ा उठपटांग था, स्त्रियों को लेकर के, नवजोती स्त्रियों को लेकर के बस उपवन में और नदी में विहार करना यही इनका काम था, वहां भजन वजन से कोई मतलब नहीं था। ऐसे नलकुवर और मणिग्रीव इधर भी देखे जाते हैं,
जाते हैं संडे को मंदिर में, लेकिन मंदिर से मतलब नहीं होता है, कहीं ज्योति लड़कियों के साथ घुमा करते हैं मंदिर में भी। तो ये देवता हो करके भी कैलाश में रह करके भगवान शिव जैसे महान भागवत पुरुष के पास रह कर भी कैलाश के रम में उपवन में स्त्रियों के साथ घुमा करते थे। अच्छा, स्त्रियों का वर्णन करते हैं, स्त्री जनई ही अनुगायत भी, स्त्रियां अनुगान करती थी। अनुगान, अनुगान का अर्थ है फॉलो करके गाना। ये भी गा रहे थे तो वो गा रही थी। इस संसार में यही तो देखा जाता है, पुरुष स्त्रियों के बारे में गाते हैं, तुम ऐसी हो, ये हो, वो हो, और स्त्रियां पुरुष के बारे में गाती है, इसको अनुगान कहते। प्राय सिनेमा सॉन्ग में यही होता है, कोई स्त्री पुरुष के विषय में गा रही है और पुरुष स्त्री के विषय में गाता है, यही बस गान, और यही गाते गाते मर जाते, नरक में जाते। नहीं, भगवान का गुण गाने के लिए जीवन मिला है, ना कि स्त्री पुरुष को गावे और पुरुष स्त्री को गावे और इसी में बस जीवन बीत जाते। गाने में, देखने में, छूने में बस जीवन जा रहा है। अपने अपने घरों में अपना चित्र जितना सजा भजा कर आदमी रखा है, भगवान का चित्र उतना नहीं रखा है। किसी किसी वैष्णव के घर में भगवान का चित्र बहुत अच्छा से है, कि यही देवताओं के लोक में भी हो रहा है। तो इस प्रकार वे लोग थे कैलाश में, और उसमें भी कैलाश के चारों तरफ गंगा जी बहती हैं, तीर्थ में थे, भगवान के धाम में थे, लेकिन वारुणी मदिराम पीत्वा, वारुणी मदिरा खूब ले लिए थे, पीते थे। जब आदमी के पास धन हो जाता है तो वह तीन काम जरूर चालू करता है, यदि उस पर अंकुश न रहे तो। एक तो स्त्रियों के साथ मनमाना विहार करता है, क्योंकि धन के बल से वो किसी भी स्त्री को अपने चंगुल में फंसा सकता है, एक तो ये होता है, और दूसरा द्युतम जुआ, और तीसरा आसव मदिरा पेय, जो उसको उन्मत्त कर दे। तो ये तीर्थ में थे, लेकिन बाबणी मदिरा पी लिया, और इसके कारण मदा घूर्णित लोचन, मद से इनकी आंखें घूमने लगी, घूम रही थी। भूल करके भी भगवान के धाम में, तीर्थ में ये सब काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अब क्या कहा जाए। बहुत धनी का पुत्र होने के कारण और शिव जी का पर्सनल एसोसिएट हो जाने के कारण इनका अभिमान बढ़ गया, और ये धर्म मर्यादा का त्याग कर दिए। तो मद से आघूर्णित नेत्र हो गए। स्त्रियां गा रही थी इनके बारे में, ये गा रहे थे स्त्रियों के बारे में, चेरतु पुष्पिते बने, और पुष्पित वन में घूमने लगे। यहाँ पुष्पित वन से तात्पर्य है कि सुगंधित हवा चल रहे थे, पुष्प खिले हुए थे, पक्षी गा रहे थे, इसलिए इनकी काम वासना और सौ गुना बढ़ रही थी, और स्त्रियों को छूना, गाना, लिंगन करना, और इस तरह से घूम रहे थे। ये देवता की दशा, श्रेष्ठ देवता की। इस स्थिति में ये थे, और इसके बाद क्या किए, उपवन में घूमते 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 अब इनके मन में ये इच्छा हुई कि अब जल विहार करें। जल विहार करने के लिए स्त्रियां भी अपना कपड़ा खोल करके पूरा रखती, और ये भी अपना कपड़ा खोल करके रखती, आवेश में ही करने लगे, और इसके बाद गंगा जी में नग्न चले स्नान करने के लिए। इसका मतलब ये कपड़ा लेकर आए नहीं थे, लेकिन हो गई इच्छा नहाने की, जल विहार करने, पहले वन विहार किए, इसके बाद अब जल विहार करने लगे नग्न। स्त्रियां इन पर जल उलीचती थी, और ये स्त्रियों पर जल उछालते थे, गाते थे हमें छुओ, ये छुओ, और इस तरह से जल में जल क्रीड़ा होने लगी। ये बिल्कुल अपने को भूल गए थे, उस समय भी पी करके मतवाले थे। अंतः प्रविश गंगायाम अम्भोज वनराजनी, गंगा जी में कमलों की पंक्तियां खिली हुई थी, कमल बहुत खिले हुए थे। तो ऐसे गंगा जी में प्रवेश किए, चिक्री रतु जुवती भी, और जुवती स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करने लगे, जैसे गजा विवा करेणु भी, जैसे दो गजराज अन्य हथिनियों के साथ विहार करते हैं जल में, ऐसे ये दोनों विहार करने लगे। हाथी जब हथिनियों के साथ होता है तो पानी ले लेकर के सूंड में और हथिनियों पर फब्बारा छोड़ता है, स्नान कराता है। हम लोग देखे हैं इस बात, वो स्नान कराता है जैसे पति अपने पत्नी को स्नान करावे। कभी वो बड़ा असक्त होता है हाथी, और दोनों सूंड में सूंड मिला करके चलते हैं, जल में तैरते हैं, कोई अंकुश नहीं होता उस समय। तो जैसे दो मतवाले गजराज हथिनियों के साथ विहार करते हैं, ऐसे ये जल में विहार करने लगे। अब देखिए क्या घटना घटी। जद्रिच्छया च देवर्षिस भगवान तत्र कौरव अपस्य नारदो देवोच्छी बाणौ समबोध्यत। जद्रिच्छया दैव की प्रेरणा, जद्रिच्छया का अर्थ है बिना किसी प्लान के, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी योजना के देवर्षि नारद जी उस रास्ते से आ गए जहां ये लोग नग्न स्नान कर रहे थे। स्नान नहीं कर रहे थे, विहार कर रहे थे, जल विहार उसको कहते हैं। इधर के लड़के तो इस विहार को नहीं जानेंगे, छोटा सा स्विमिंग पूल होता है उसमें वो विहार नहीं हो सकता। नदियों में लड़के विहार करते हैं, बहुत भारी सरोवर में तो विहार कर रहे थे। नारद जी आए तो नारद जी के लिए यहाँ पर देवर्षि और भगवान दो शब्द सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं। देवताओं में ऋषि हैं, जैसे मनुष्यों में कुछ ऋषि होते हैं साधु महात्मा, तो नारद जी देवताओं में साधु महात्मा है। वे विवाह नहीं किए हैं, ब्रह्मचारी हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड में भागवत धर्म का प्रचार करते हैं। ब्रह्मा जी के सबसे प्रिय पुत्र नारद जी, और भगवान हैं। भगवान का अर्थ है सर्वज्ञ, भक्ति देने में समर्थ या किसी का उद्धार करने में समर्थ। यहाँ पर यह अर्थ है कि नलकूबर का उद्धार करने में समर्थ, भगवान का यह अर्थ हुआ। इनमें शक्ति थी तो इन्होंने देखा अपश्यत और छी बाण समबुद्ध्यत। छी बाण मतलब मन उन्मत्त। उन्होंने देखा कि ये दोनों पी करके बिल्कुल टंच है, ये पी करके बेहोश हो रहे। समझ गए कि ये लोग पी है, उनकी आंखों से, उनकी चाल से, गान से समझ गए नारद जी कि ये दोनों पिए हैं। तो उनके हृदय में बड़ी करुणा हुई। तम दृष्ट्वा ब्रीड़िता दिव्यो विवस्त्रा शाप संकिता। जब ही नारद जी को स्त्रियों ने देखा, वो देवांगनाएं जब देखी, वो स्वर्ग की देवियां ज्योति स्त्रियां, तो वे तुरंत भयभीत हो गई, भयभीत हो गई कि नारद जी शाप दे देंगे। कि नग्न स्नान करना सोशल अपराध था, ये समाज का अपराध था। तो वे डर गए कि नारद जी तो शाप दे देंगे, हम लोग नग्न स्नान कर रही हैं। तो वासांसी पर्यधु शीघ्रम, तो शीघ्र आया करके अपना अपना साड़ी जो भी वस्त्र था सब पहन ली। जब ही दूर से देखे कि नारद जी आ रहे हैं तो निकल करके अपना अपना वस्त्र पहन ली। वो डर गए कि नारद जी शाप दे देंगे। कुछ भी है तो सारा संसार साधुओं के कंट्रोल में है। कि नग्न स्नान करने वाली देवियां डर गई, और नारद जी शाप दे सकते थे कि इसी तरह से नग्न पेड़ हो जाओ, पत्थर हो जाओ, हो जाती। जैसे गौतम जी ने अपनी पत्नी को शाप दे दिया था कि पत्थर हो जाओ, जब तुमको अपने पति में और इंद्र में पहचान नहीं है तो तुम बिल्कुल पत्थर हो, पत्थर हो जाओ। तो पत्थर हो गई थी, बाद में भगवान श्री रामचंद्र के चरण कमलों के संस्पर्श से उसका उद्धार। तो ये स्त्रियां जानती थी साधुओं का प्रभाव, और उसमें भी नारद जी का। यदि नारद जी क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन स्त्रियों ने सोचा कि हम लोग इतना पाप कर रही हैं, नग्न स्नान कर रही हैं, तो ये साप दे सकते हैं। तो भयभीत होकर के और अपना अपना वस्त्र पहन करके सिर नीचे करके खड़ा हो गए। अभी भी इनको भय था कि नारद जी ये पूछेंगे कि क्यों नग्न स्नान कर रही थी, अभी भयभीत थी। लेकिन कम से कम साड़ी पहन ली, कपड़ा पहन ली, और वे जो दोनों थे वे नारद जी के आगमन की परवाह नहीं किए।
बल्कि उनके मन में ये विचार आया, साधु इस रास्ते से क्यों आए, इसकी क्या जरूरत है, हम लोग यहाँ खेल रहे हैं, विहार कर रहे हैं, तो साधु को दूसरा रास्ता पकड़ कर जाना चाहिए। उनके मन में यह बात आई। इस तरह से किसी को डिस्टर्ब करना, कोई स्पोर्ट्स में है, खेल कूद में है, तो साधु को थोड़ा विचार करके चलना चाहिए, ऐसे क्यों इधर आ गए, मन में ये सोच रहे थे, कहे नहीं, और पी लिए थे मदिरा, इसलिए उन्मत्त थे, वस्त्र तो पहनना दूर रहा, उनके मन में कुछ दुर्भाव आया, उल्टे दोष बुद्धि आए कि साधु को इस तरफ से आने की क्या जरूरत है, पहले पता लगा लेना चाहिए कि उधर कौन है, कौन स्नान कर रहा है या कर रही है, इधर क्यों आ गए। वे जल से निकले नहीं, नारद जी को प्रणाम नहीं किए, कुछ नहीं किए, ऐसे नंग धड़ंग। और नारद जी ने विचार किया, ओहो देवताओं की यह दुर्दशा, अरे कोई मनुष्य ऐसा काम करता, वो भी अफ्रीका अमेरिका का, तो कोई बात नहीं थी, ये देवता होकर के और ये नग्न स्नान कर रहे हैं। तब नारद जी के हृदय में बड़ी दया उत्पन्न हो गई, इनकी ऐसी दशा नहीं होनी चाहिए। रियली मैं आपसे सत्य कहता हूं, जब हम लोग विदेश में प्रचार करते हैं तो अपने देश के भारत के लोगों की जब यहाँ दुर्दशा देखते हैं तो हम लोगों के हृदय में भी करुणा उत्पन्न होती है, लेकिन हम शक्तिहीन है। नारद जी तो समर्थ थे, उद्धार कर सकते थे, और हम लोग क्या करें, केवल करुणा उत्पन्न होकर के रह जाती है कि ओहो ऐसे गुजराती बच्चे जो हिंदी नहीं समझते, गुजराती नहीं समझते, और उनका भी खान पान सब चिकन खाते हैं। क्या सुंदर शब्द दे दिया गया, मुर्गा मुर्गी के बदले चिकन शब्द दिया गया। ये दशा होती जा रही है। तो नारद जी के हृदय में बहुत भारी करुणा उत्पन्न हो गई कि बेचारे देवता होकर के, बहुत उन्नत पोजीशन का होकर के, और इस दुर्गति में पड़ गए। इतने बड़े महाभागवत के पुत्र हैं, लेकिन आज इनकी दुर्दशा हो गई, तो उनके हृदय में दया उत्पन्न हो गई। तो स्त्रियों ने शीघ्रम वस्त्र पहना, लेकिन विवस्त्रो नैव गुह्यकौ, तौ दृष्ट्वा मदिरामतौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ तयोर अनुग्रहार्थाय शापम दास्यम इदम जगौ। अब नारद जी तयो अनुग्रहार्थाय, उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए यह वचन बोले। नारद जी इस प्रकार बोलने लगे, उन पर अनुग्रह करने के लिए, देखिए भागवत का शब्द तयो हो अनुग्रहार्थाय, तयो हो दोनों वचन के लिए, उन दोनों पर अनुग्रह करने के लिए यह वचन कहे, इदम जगौ। ध्यान रखना चाहिए कि अगस्त जी या दुर्वासा जी जैसा नारद जी क्रोधी नहीं है, वे अनुग्रह करने के लिए साप दे रहे हैं। अनुग्रह का अर्थ होता है अनुग्रह, किसी को जब हम पकड़ते हैं, अपना बनाते हैं, तो उसको अनुग्रह कहते हैं, कृपा करते हैं। तो इस प्रकार बोले नारद जी, सब कुछ समझ गए कि इनकी दुर्दशा का कारण क्या है, एक क्यों आज इस स्थिति में हो गए हैं, इसका मूल कारण है धन। नारद जी समझ गए, धनद के बेटा है, अधिकांश देखा जाता है कि धनियों के बेटा खराब हो जाते हैं, इस संसार में भी देखा जाता है, क्योंकि बच्चों को मनमाना पैसा मिलता है और उनके बिगड़ते देर नहीं लगती है, फिर कहीं भी घूमना, किसी भी लड़की को लेकर के इधर उधर घूमना, खान पान होटल अटेंड करना, कोई बात नहीं, होटल में फीस देना पड़े तब भी पैसा की कमी नहीं है, इस तरह से बिगड़ते। तो नारद जी कहते हैं, नहिन्यो जुस्तो जोस्यान बुद्धि भ्रंसो रजोगुण श्री मदात आभिजात्यादि जत्र स्त्री द्युतम आसव। इस संसार में जो व्यक्ति प्रिय विषयों को भोगता है, रूप रस गंध आदि को, तो उसकी बुद्धि को नष्ट करने में सबसे बड़ा कारण है धन। नारद जी कहते हैं, उच्च कुल में जन्म लेना ये भी बुद्धि को नष्ट करता है, अधिक पढ़ लिख जाना ये भी बुद्धि को नष्ट करता है, और सुंदर शरीर भी बुद्धि को नष्ट करता है, लेकिन इन तीनों को नारद जी कह रहे हैं कि ये उतना बुद्धि को नष्ट नहीं करते हैं जितना धन बुद्धि को नष्ट करता है। कि देखा जाता है कि उच्च कुल में जन्म लेकर के भी कुछ लोग बहुत नम्र होते हैं, बहुत पढ़ा लिखा होने के बाद भी उनमें सदगुण देखा जाता है, सुंदर शरीर होने के बाद भी वे अभिमान में नहीं आते, कुछ लोग देखे जाते हैं। लेकिन ज्यादा धन होने के बाद भी सतपथ पर कोई रह जाए ऐसा बिरला कोई दिखाई देता। श्रीमद वक्र न की न कही प्रभुता बधिर न काय, मृगनय नहीं के नयन सरक को असला गिन जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रीमद पा करके कौन नहीं टेढ़ा हो जाता है, उसकी चाल टेढ़ी हो जाती है, सीधा नहीं चलता। एक नीतिकार ने कहा है कि लक्ष्मी जो है वो बीस की सहोदरी है, बीस भी समुद्र से निकला था और लक्ष्मी जी भी समुद्र से निकली थी। लक्ष्मी जी केवल टेढ़ा अंधा और बहरा बनाकर छोड़ देती हैं। यही आश्चर्य है कि कैसे मारती नहीं है, तो जान से मार देना चाहिए था क्योंकि ये बीस की बहिन है, लेकिन अंधा कर देती है। आदमी देखता नहीं है दूसरे के दुख को, जब बहुत धन हो जाता है तो गरीब आदमी के निर्धन के दुख को आदमी नहीं देख पाता, वो अंधा हो जाता है और बहरा भी हो जाता है। लोग उसके पास एप्लीकेशन ले जाते हैं, कुछ निवेदन करते हैं, लेकिन सुन ही नहीं पाता है। हम लोगों के भारतवर्ष में हम देखे हैं जो लोग एमपी के लिए या एमएलए के लिए खड़ा होते हैं वोट में, तो जीतने के पहले वो द्वार द्वार पर वोट मांगते हैं और जब जीत जाते हैं तो फोन भी नहीं उठाते, बहरा हो जाते, वो सुनते ही नहीं है कि कौन आया है क्या कह रहा है। धन और पद आदमी को बहरा बना देता है, अंधा बना देता है, टेढ़ा बना देता है, उसमें सीधा नहीं देखता है, सीधी चाल से भी नहीं चलता है, क्योंकि ये बीस की बहिन है लक्ष्मी। तो इस तरह से श्री मदांध उसको कहते हैं, श्री मदांध, श्री मद से अंधा, अंधा मतलब विवेकहीन, क्या करना चाहिए क्या खाना चाहिए क्या बोलना चाहिए वो आदमी सब भूल जाता है, श्री मद से अंधा। एक कवि ने भारतवर्ष में कहा है कि कनक कनकते सौ गुना मादकता अधिका है, वा पाए वा खाए बौराए नर वा पाए बौराए। कनक नाम का एक पौधा होता है भारतवर्ष में, उसको धतूर कहते हैं, धतूर, उसको खा करके आदमी बौरा हो जाता है। और कनक का सोना भी होता है, तो रहीम कवि जी लिखे हैं, वो कहते हैं कि इस कनक की अपेक्षा, धतूर की अपेक्षा इस कनक में सोना में सौ गुना मादकता है, क्योंकि उसको तो खाने पर आदमी पागल होता है, इसको केवल पाल लेने पर पागल हो जाता है। सोना यदि अपने पास हो जाए तो उसको पाते ही बौरा जाता है। और एक कवि यहां तक कहा है कि इस संसार में चाहे गुड़ की बनी मदिरा हो, चाहे गेहूं की बनी मदिरा हो, या फलों की किसी चीज की बनी मदिरा हो, लेकिन कोई भी मदिरा उतना मादकता पैदा नहीं करती है जितना स्त्री, क्योंकि ये सब मदिरा है ये पीने पर मद बढ़ाते हैं, लेकिन स्त्री पर तो केवल नजर पड़ जाने पर मद चढ़ जाता है, आदमी पागल हो जाता है देखते। तो कोई संसार में ऐसा पदार्थ नहीं है पीने का जिसको देखते ही नशा चढ़ जाए। ये सब शास्त्र के उद्गार हैं वास्तव में, और बात बिल्कुल सत्य है, श्री मद से आदमी अंधा हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता। तो ऐसे इस संसार में जो विषय भोग कर रहे हैं उनकी बुद्धि को नष्ट करने के लिए अन्य बहुत से कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है श्री मद, धन का मद। श्री मदाद अभिजात्यादि जत्र स्त्री द्युतमासव, क्योंकि जहां धन होता है तो वहां स्त्री द्युत, द्युतम और आसव, ये तीनों अपने आप आ जाते हैं। धन से आदमी उच्छृंखल स्त्रियों का उपभोग करता है। वास्तव में भगवान ने नियम बनाया इस संसार में मनुष्य स्त्री रख सकता है, कि धर्म मर्यादा के अनुसार किसी का पाणी ग्रहण करे और उसके साथ रहे, ये धर्म के अनुकूल है। भगवान ने गीता में कहा है धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ, हे भर्तर्षभ धर्म के अविरुद्ध मतलब अनुकूल जो काम वासना है वो मैं हूं। तो विवाह करके किसी स्त्री के साथ संतुष्ट रहना यह धर्म है, लेकिन एक स्त्री के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों से संपर्क करना ही सबसे बड़ा अधर्म है इस संसार में, ये अधर्म हो जाएगा। लेकिन जहां अति पैसा हो जाता है तो आदमी इस नियम को तोड़ देता है और वह खाने पीने लगता है, मनमाना आसो पीने लगता है। और धन का एक और सबसे बड़ा दोष उत्पन्न होता है, हन्यन्ते पशवो जत्र निर्दय रजितात्म भी। धनी आदमी अजितात्मा हो जाता है, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं रहता है, मन पर कंट्रोल नहीं रहता है, और अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए वह फिर पशुओं की हत्या करता है और कहता है कि पशुओं में सोल नहीं है। ये कहते पशुओं में सोल नहीं है, जो मतलब तुम सोल का लक्षण ही नहीं जानते हो कि जीव नहीं है पशुओं में। तो छोटा बच्चा होता है और बोलता नहीं है, चलता नहीं है, तो उसको भी कह दोगे कि इसमें भी जीव नहीं है, तो पशुओं की हत्या करता है। और जितने भी धनी राष्ट्र हैं सब पशु काट काट कर खा रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। अभी हमने सुना था इंग्लैंड में 4 मिलियन गाय को मारने वाले थे, पता नहीं वो मारे या मारेंगे आगे। वैसे तो बारी बारी से वो मारते ही, लेकिन मास स्लॉटर बहुत बड़े स्केल पर मारने वाले थे, मार रहे होंगे महीने महीने या सप्ताह सप्ताह। जो भी हो, इस तरह से निर्दय ही अजित आत्मा भी, मनुष्य जब धन के मद में निर्दय हो जाता है, अजितेंद्रिय हो जाता है, तो हन्यन्ते पशवः जत्र, तब वो पशुओं की हत्या करता है। मनुष्य इस संसार में आसानी से जी सकता है, केवल दूध पीकर या अन्न खा करके, फल खा करके, लेकिन इस जिह्वा को तुष्ट करने के लिए, शरीर को पोषने के लिए वो पशुओं की हत्या करता है। भगवान बहुत सामग्री बनाए हैं इस संसार में, बहुत खाने की चीजें हैं, पशुओं की हत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन जब धन के मद में आदमी हो जाता है तो जीव हिंसा करना चालू करता है। इस संसार में बहुत वस्तुएं बनाई गई हैं खाने के लिए, साधारण साधारण वस्तु को खा करके भी शरीर में बल का संचार होता है। एक बार की घटना है, मैं रथ यात्रा में दिल्ली में था, हमारी संस्था की रथ यात्रा निकली थी, तो हम लोग एक ऐसे सड़क से गुजरे जहां दोनों तरफ ड्राई फ्रूट्स की दुकानें थी। ड्राई फ्रूट्स दोनों साइड में भारी भारी दुकानें थी। तो मैं अपने मित्र से बात कर रहा था, मैं कहा कि देखो भगवान कितना बनाए हैं फल, ये भगवान कृष्ण इतना फल बनाए हैं, मनुष्यों को मिल रहा है, ये किसी मिनिस्टर के पेट से नहीं आया है, ये सब धरती से निकल रहा है। तो मैं कह दिया कि भगवान बहुत बनाए हैं, तो पूरी दुनिया में सब जगह ड्राई फ्रूट्स बिकता होगा, तो भगवान बहुत बनाए हैं। तो भक्त कह दिया, मेरा मित्र था, वो कहा कि नहीं, अगर एक एक आदमी पर इसको बांटा जाए तो बहुत कम पड़ेगा। तो कहने लगा कि भगवान बहुत कम बनाए हैं ड्राई फ्रूट्स। वो कहने लगा, मैं कहा कि बहुत बनाए हैं, तो वो कहता नहीं बहुत कम बनाए हैं, अगर सबको बांटा जाए रोज तो ये बहुत कम पड़ेगा। तो मेरे मुख से निकल गया, इसीलिए कम बनाए हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, ये फालतू चीज है, इसकी जरूरत नहीं है। तो इस पर चिढ़ गया, रंज हो गया, कहा कि इस मेवा को, इतने सुंदर पदार्थ को आप हो गया। मैं कहा कि वास्तव में आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ड्राई फ्रूट्स की या गीला फ्रूट्स की, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो लगा कहने, क्यों नहीं, इसको खा करके मनुष्य का शरीर बलवान होता है, ये होता है, स्वस्थ होता है। तब तक एक बैलगाड़ी आ रही थी और बहुत लोड था और 2 बैल उसमें जुते हुए थे। मैं कहा कि इसमें से इन ये जो बैल हैं इतना भारी बोझ खींच रहे हैं, ये क्या ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, बताओ, ये ड्राई फ्रूट्स खा करके इतना खींच रहे हैं, और ड्राई फ्रूट्स खाने वालों को गाड़ी में जोतो तो कितना खींचेंगे। तो बिना ड्राई फ्रूट्स खाए भी ये भारी बोझा खींच रहे हैं, घोड़ा हाथी, ये ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, इनके लिए सुपरमार्केट से सब खरीद कर आता है क्या, सिंपल घास खा लेते हैं और फिर भी इतने बलवान है। हमने तो देखा अफ्रीका में कि अफ्रीकन लोग बहुत सिंपल खाते हैं,
मकई का भात खाते हैं, नमक थोड़ा सा छिड़क लेते हैं, सब्जी भी नहीं खाते हैं, और हम इंडियन लोग इतना अचार चटनी क्या क्या खाते हैं, लेकिन उनके आगे हम क्या हैं? अगर वे एक ट्रक हैं तो हम मारुति कार हैं। इंडियन लोगों का शरीर ऐसा रहता है, आप तो देखे होंगे। भोजन से कोई अंतर नहीं पड़ता है, सिंपल भोजन से भी आदमी बलवान रह सकता है। बहुत बहुत चटनी अचार ये सब खाने से पेट टूट जाता है, बल नहीं पड़ता है। तो इस जगत में कोई आवश्यकता नहीं है कि पशुओं की हत्या करके हम जिए, नहीं, ये पाप की कमाई हमारे सिर पर रह जाती है और शरीर भी अजर अमर नहीं हो पाता है। तो नारद जी कहते हैं, कौन लोग पशु की हत्या करते हैं कि मन ने माने इमम देहम अजरा मृत्यु नश्वरम, नश्वरम देहम, इस विनाशी शरीर को अजरा मृत्यु मन ने माने, जो इसको अजर और अमर मान लेते हैं वही पशुओं की हत्या करते हैं। शरीर है नश्वर, चाहे आप इसको पाप करके पोसिए और चाहे धर्म पूर्वक पोसिए, शरीर जाएगा, ये रुकेगा नहीं। इस अमेरिका में भी इतने लोग गाय खा रहे हैं लेकिन बूढ़ों की संख्या उतनी ही है और वो मरने के लिस्ट में है, मरना है ही, लेकिन पाप करके अपने कर्म का फल लेकर के नरक में भोगेंगे, शरीर बचा नहीं पाए। अगर यह बात होती कि चलो पाप करके शरीर बचा लेंगे तो शरीर बचाने के लिए पाप किया जा सकता था, तो बचाएंगे तो नहीं, आखिर ये मरेगा। तो मूर्खता बस कुछ लोग इस शरीर को अजर और अमर मान लेते हैं कि कभी मरने वाला नहीं है और कभी जरा माने बूढ़ा होने वाला नहीं, अजर जीर्ण होने वाला नहीं। लेकिन शरीर का धर्म है शश्वत पतता, श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, ये हमेशा गिर रहा है, निरंतर छीण होता जा रहा है। मनुष्य समझता है कि नहीं आज के बाद कल मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, इस महीने में कुछ तबीयत खराब है, आगे मैं बिल्कुल पहलवान हो जाऊंगा या बड़ा स्वस्थ हो जाऊंगा, या 96 में 96 में मेरी कुछ तबीयत खराब रही लेकिन मैं 97 में बिल्कुल अजर अमर हो जाऊंगा, यह मूर्खता है। शरीर हमेशा आज की अपेक्षा कल डाउन हो रहा है, ये इसका स्वभाव है। नहीं, हम समझ लेते हैं कि नहीं नहीं हम स्वस्थ हो जाएंगे, यदि हम बर्गर खाएंगे तो हम मोटा हो जाएंगे। और कभी कभी तो गार्जियन लोगों के मन में, पेरेंट के मन में अज्ञान आता है, मेरा बेटा यदि चिकन खाएगा ये खाएगा तो थोड़ा मोटा हो जाएगा, ये सोचते, ये विचार उठता है पेरेंट्स के मन में, और ये बहाना करके वो छोड़ देते हैं, जाने दो जो खाता है मत रोको उसको, खाने दो। वाह रे वाह, इस तरह का विचार आता है। तो पाप का भोजन खिला करके हम तो अमर अजर कर नहीं सकते हैं शरीर को, हमारा भविष्य बहुत दुखमय हो जाता है, पाप का फल भविष्य में भोगना पड़ता है, नरक में भोगना पड़ता है। दोष सबसे ज्यादा उत्पन्न होता है, पाप उत्पन्न होता है जब हम अपने को अजर अमर मान लेते हैं शरीर को। यदि आदमी मृत्यु पर विचार करे तो इतना पाप नहीं कर सकता है। आज मैं कार में आते समय बातचीत कर रहा था भिखू भाई से कि इस अमेरिका में या विदेश में मरने पर पता नहीं चलता है कि कोई मरा या जिया, लोग भीतर ही भीतर कार में ले जाकर के कहीं क्रिमेशन में जमीन में डाल देते हैं। लेकिन हमारे भारत वर्ष में प्रकट देखते हैं लोग कि आज मर गए, बल्कि अर्थी पर रख करके और राम नाम सत्य है बोलते हुए ले जाते हैं, जिसे दूसरे लोग सावधान होते हैं उस दिन के, अरे बाप रे बाप, हमारा भी नंबर आ सकता है इसी तरह से। तो यह ज्ञान उत्पन्न होता है, रियली ज्ञान उत्पन्न होता है। और इसके बाद मरने के बाद अपने स्वजनों की मीटिंग होती है, भोज भात होता है, तो किस बेसिस पर कि एक आदमी मर गए, तो इससे ज्ञान खुलता है रियली। भगवान ने गीता में बताया है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यह एक ज्ञान है। जन्म को देखो, मृत्यु को देखो, व्याधियों को देखो और बुढ़ापा को देखो। आजकल का आदमी नवजुवतियों का चित्र अपने घर में टांग देता है, लेकिन जब बूढ़े का या मरे हुए का टांगेंगे तो दिमाग खुलता रहेगा कि अरे बाप रे बाप, ये हमको होना है। लेकिन आदमी मृत्यु को, बुढ़ापा को, रोग को इग्नोर कर रहा है। यह आज के सभ्यता का दोष है। वास्तव में जो संसार का फैक्ट है उसको अपने सामने रखना चाहिए। भगवान बुद्ध देव बूढ़े को, रोगी को और मृतक को देखकर घर छोड़कर चले गए। यह इतिहास बताता है। तो भिखू भाई बता रहे थे कि यहाँ के लोग डेथ शब्द सुनकर बहुत डरते हैं, इसीलिए किसी मरे हुए आदमी को बाहर नहीं घुमाते, उसको गुप्त रूप से ले जाकर के जमीन में गुप्त कर देते। ये दशा है। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है कि मृत्यु को प्रकट दिखाया जाता है। बल्कि कोई आदमी घर में मरने वाले होते हैं तो सभी स्वजनों को बुलाया जाता है कि आइए भेंट कीजिए। उस भेंट करने के पीछे भी ज्ञान यह है कि आकर के देखिए कि शरीर और जीवन अनित्य है। मुख्य साइंस ये है, जो हजारों बार पुस्तक पढ़ने से दिमाग नहीं खुलेगा वो देख करके खुल जाता है। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हजारों शब्द के बराबर एक चित्र होता है और हजारों चित्र से बढ़ करके एक मूर्ति होती है, डायरामा। प्रभुपाद जी बताते थे, इसलिए डायरामा बनाओ मंदिरों में, और हजारों डायरामा से एक जीवित व्यक्ति ज्यादा असर डालता है। इसकी जरूरत है कि हम हमेशा आंखों के सामने रखें कि मरना है एक दिन, और एक दिन बूढ़ा होना है। कभी भी भीषण रोग हमको आक्रांत कर सकता है, लकवा मार सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और अंत में मरना पड़ेगा। बहुत भारी दुख होता है मरने में, ये सब देखी हुई बातें। अनुदर्शनम, भगवान गीता में कहते हैं कि इनको निरंतर देखना, ये है ज्ञान। लेकिन जब आदमी इसको भूल जाता है तो शरीर को अजर अमर मान लेता है और इसके लिए पाप करता है। दूसरे का मांस खा करके अपना मांस थोड़ा इंक्रीज करना चाहता है, अपना मांस थोड़ा बढ़ जाए। इतना ज्यादा फालतू एक्स्ट्रा मांस बढ़ाकर करेंगे क्या, ये तो जाएगा नहीं साथ में। देह यही छोड़ना है, चाहे थोड़ा देह पतला हो या मोटा हो। और आयुर्वेद कहता है कि मोटे आदमी कम दिन जीते हैं, पतला आदमी ज्यादा दिन जीवित रहता है। ये देखा गया है परसेंटेज। तो मांस खा करके बहुत मोटा बनने की आवश्यकता नहीं है, पाप चढ़ जाएगा। अंत में शरीर क्या होता है, इसको नारद जी कहते हैं, देव संगीतम अप्यंते कृमि बिड भस्म संगीतम भूत ध्रुक तत्कृते स्वार्थम किम वेद निरयोजता। एक दिन शरीर का नाम देवता होता है, मनुष्य होता है, या राष्ट्रपति होता है। इसी शरीर का नाम एक दिन रखा जाता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, या कलेक्टर, जज, या इंजीनियर, डॉक्टर। लेकिन एक दिन इस शरीर की क्या दशा हो जाती है, इसका क्या नाम पड़ता है, कृमि बीट भस्म संगीत, कृमि बीट भस्म संगीतम। अगर कोई जीव खा ले हमको, हमारे शरीर को, तो एक दिन वीट संज्ञा हो जाती है कि इस जीव का ये मौल हो गया। और कोई सियार, कुत्ता, गिद्ध खा जाए तो शरीर का नामो निशान मिट जाता है और उसकी संज्ञा होती है वीट। वीट का अर्थ होता है मौल। और इसको यदि आग में जला दिया जाए, जैसे हिंदू लोग जलाते हैं, भस्म संज्ञा, अंत में राख संज्ञा मिलेगी। आज राष्ट्रपति हैं, कल राख पति हो जाएंगे, तो राख होना है। एक दिन वो संज्ञा होगी। अथवा जमीन के अंदर कर दिया जाए तो कृमि, हम जर्म्स बन जाते, कीड़े बन जाते, शरीर पूरा कीड़ा हो जाता। लोग कहते हैं कि ये शरीर जो जमीन के अंदर है तो कयामत के दिन खुदा आएगा और इसमें प्राण डालेगा, और ये प्राण क्या डालेगा, वो सब कीड़ा हुआ, खत्म हुआ, कभी वो दिन नहीं आएगा।
और उस दिन आने के पहले जरा शरीर को देखो तो नीचे क्या है। मैं देखा कि इस न्यूयॉर्क में अमेरिका के बहुत शहरों में मुर्दा बहुत जमीन छेके हैं, मुर्दों के लिए काफी जमीन है, जीवित आदमी के लिए भाड़ा देना पड़ता है बहुत कड़ा, जब जल्दी घर नहीं मिलता। जब मैं नैरोबी में था तो वहां एक दिन अखबार में निकला था, किसी ने यह शिकायत किया राष्ट्रपति के पास, जो भी वहां के मुख्य हैं, मोई या कोई हैं, उनके पास शिकायत पहुंचा कि ये जो हिंदुओं का क्रिमेशन है इससे धुआं निकलता है और धुआं पर्यावरण को, एटमॉस्फेयर को दूषित करता है, इसलिए इन लोगों को ये कहा जाए कि ये लोग भी जमीन के अंदर डालें, ये जलावे न, क्योंकि इससे धुआं हवा दूषित होती है। तो मोई के पास जब ये बात गई तो उसने पार्लियामेंट की बैठक में कहा, कुछ रिप्रेजेंटेटिव बनाया और उसने कहा कि आप जाकर पता लगाइए कि हिंदुओं का क्रिमेशन कितना दूर में है। तो जाकर रिपोर्ट दिए, रिपोर्ट देने वाले कि 2 एकड़ में है, और दूसरे लोगों का क्रिमेशन कितना है जरा पता लगाओ। तो आकर पता लगाने वाला लगाया और खूब बहुत छपा था कि दैट इज गोइंग टू बी अनदर नैरोबी। ये निकला था, मुर्दों के लिए एक अलग नैरोबी खड़ा हो रहा है। तो मरमर कर जमीन घेरते जाते हैं, और हमारे भारतवर्ष में तो मुसलमानों ने इसी तरह से कब्जा किया, कहीं भी मुर्दा को गाड़ दो बस कब्जा हो गया। हिंदू संवेदनशील होते हैं, मरने पर वे क्यों विरोध करें, क्या करें, और लोग जाते थे ग्रुप में मुर्दा को गाड़ने के लिए जमीन, और कोई मर गया है तो हिंदू रोकते नहीं थे, क्या है अब रोके झगड़ा करें, और गाड़ते जमीन दखल करते गए और आज ये सिरदर्द बने हुए। तो मरमर कर जमीन दखल करते सब। तो बाद में उसने कुछ डॉक्टरों को नियुक्त किया मोई ने कि आप जा करके हिंदुओं के क्रिमेशन की हवा का परीक्षण कीजिए कि क्या उससे पर्यावरण दूषित होता है। तो डॉक्टरों ने रिपोर्ट दिया है कि इससे हवा बिल्कुल दूषित नहीं होती है और सबसे बेस्ट पद्धति यही है कि जलाया जाए। उन लोगों ने रिपोर्ट दिया, जिसको आज ये लोग स्वीकार करते हैं, इसको हमारे ऋषि मुनि ने करोड़ों वर्ष पहले ही कहा था कि यही पद्धति ठीक, जलाना ही ठीक है, थोड़े से जमीन में करोड़ों लोगों को जलाया जा सकता है, और नहीं इस तरह से जमीन छेकते छेकते तो मर करके पूरी दुनिया कवर कर लेंगे, तो खेती कहाँ होगी, कहाँ आदमी बसेगा।